نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سومے رمضان کتاب میں سے ہم دوسرا ٹاپک آج دیکھیں گے. اس کا عنوان ہے روزے کا حکم. قرآن پاک میں روزے کا حکم سورۃ بقرہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وہ آیتیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھتی ہوں. اور روزے کی بات اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک ہی موقع پہ آیا ہے جہاں تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا بہت ذکر تو ملتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی 183 سے لے کر آیت نمبر 188 تک ہے. اس کے برعکس اگر ہم نماز کو دیکھیں تو وہ بہت دفعہ ذکر آتا ہے. وجہ اگر غور کریں تو یہ ایک تو سمجھ آتی ہے کہ نماز دن میں کئی بار ہے جبکہ روزہ سال میں ایک بار ہے, تو ایک ہی دفعہ کی تذکیر کافی ہے, ورنہ ہر سال لوگوں کو پورا قرآن چھاننا پڑتا کہ اس میں سے روزے کے احکامات لیں. تو آئیے ذرا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو. گنتی کے چند دن ہیں, پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے. سہولت دیکھیے کتنی ہے. پہلے تسلی دلائی گئی کہ دیکھو تم پہ فرض کیا گیا ہے تو پہلوں پہ بھی تھا. بعض دفعہ بچے دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی روزہ نہیں رکھ رہے یا نماز نہیں, تو سوال کرتے ہیں کہ اسلام اتنا مشکل دین کیوں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دلوا رہے ہیں کہ اگر اب کوئی ایسا کہے تو اس کو بتا دو کہ نہیں, یہ تم پہ نہیں پہلوں پہ بھی تھا. روزہ ہر دور میں رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر تین روزے فرض ملتے ہیں. اسی طرح مختلف اوقات اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ روزہ ہر دور میں رہا. اسلام میں بھی روزہ مختلف دور میں واجب رہا. اس وقت جو موجودہ حالت ہے یہ آئی تو پھر باقی تمام چیزیں نفل کے ذمن میں چلی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10 روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح ہر مہینے کے بیچ کے جو 3 دن ہیں 13, 14 اور 15 جب چاند تقریباً پورا ہوتا ہے اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے, لیکن پھر روزہ فرض کر دیا گیا. وہ کیسے فرض ہوا اس کا بھی ذکر اس میں آئے گا. تو کہا کہ کیوں رکھا گیا؟ لعلکم تتقون. اصل یہ بات ہے, روزہ تقوی کو پیدا کرتا ہے. کیسے؟ دنیا کی کوئی اور عبادت, یعنی اگر آپ کوئی بھی دوسری عبادت دیکھیں تو کم از کم دو کو ضرور پتہ چلتا ہے, ایک آپ اور ایک دوسرا. مثلاً آپ صدقہ دیں, کسی کو نہ پتہ چلے لیکن اس کو ضرور پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ نے دیا. آپ کہیں بیٹھے اور آپ نے نماز پڑھی, چھپ نہیں سکتا. اسی طرح باقی عبادات کا معاملہ ہے. حج پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے رہیں, کوئی نہیں جانتا کہ آپ ویسے ہی نہیں کھا رہے یا آپ کا روزہ نہیں ہے یا آپ کا روزہ ہے. تو روزہ بندے کا رب سے تعلق جوڑتا ہے, اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. دن میں کتنی بار انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر نہ ہو تو پانی کا گھونٹ پی لے, لیکن اللہ کی احساس کو پیدا کرتا ہے. گنتی کے چند دن ہیں, ڈرتے کیوں؟ بہت دن نہیں ہے, گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس میں تسلی بھی ہے اور فرض کی اہمیت کا احساس ہے کہ دیکھو اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو بعد میں پورا کرنا پڑے گا. یعنی ایام معدودات, ایک لفظ دو معنی. کیا؟ تسلی ہے, زیادہ دن نہیں ہے, 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ. اور دوسری بات, گنتی ہے, پوری کرنی پڑے گی, چھٹ گیا تو دوبارہ اس کو میک اپ کرو گے. پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. یہ رخصت ہے, بیمار یا مسافر ہے, چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے, رکھنا چاہے رکھ بھی لے. अगर ऐसी बीमारी है जिसका रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं तो रख ले, ऐसी बीमारी है कि रोज़ा रखने से टूटता है या बीमारी बढ़ती है या दवा खानी पड़ती है तो छोड़ दे, लेकिन दूसरे दिनों में रखनी पड़ेगी। और जिनको ताकत है तो वह एक रोज़े का बदला एक मिस्कीन का खाना है। ये क्या बात है, ये शुरू का हुक्म था। जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो एकदम फ़र्ज़ नहीं कर दिया, बल्कि हुक्म क्या था, चाहो तो रोज़ा रख लो, खुद नहीं रख सकते, एक मिस्कीन को खाना खिला दो। अब हर दर्जे के लोग होते हैं, जो ईमान के आला दर्जों पे थे, रखना चाहते थे, उन्होंने रख लिए, और वो लोग जिनके पास माशाल्लाह माल और दौलत ज़्यादा था, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं रखते, हम किसी को खिला देते हैं। कुछ अरसा तक ऐसा चलता रहा, फिर जब देखा कि लोग यूज़ टू हो गए, मिक्सअप हो गई ये आदत, तब तबीयत में आ गई, तो फिर कहा कि अब रोज़ा रख लो। जो कोई मज़ीद नेकी करे तो वो इसके लिए बेहतर है। मज़ीद नेकी क्या है कि दूसरे को खाना भी खिला दो और ख़ुद भी रोज़ा रख लो, और तुम रोज़ा रखो ये तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। यानी रोज़ा रखना बहरहाल बेहतर है इससे कि दूसरे को खिलाया जाए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में परेशान रहते हैं, क्या करें, रखें कि ना रखें, किसी को खिला दिए कि ख़ुद भी रखें। तो इसके लिए हर बंदा अपने आप से पूछे, रख सकती हूँ, रख लेती हूँ। देखिए, रख सकना और ना रखना ये जुर्म है, रख ना सकना शुरू करना इस नीयत से कि अल्लाह ना रख सकी तो खोल दूंगी, और बीच में खोल देना ये और बात है। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देखेगा, आपकी नीयत को देखेगा, आपने कोशिश तो की। बाज़ लोग पहले से ही सोच लेते हैं मैं नहीं रख सकती, नहीं, इसमें आप क्या मामला करें। अगर आपको डाउट है कि मैं रखूँगी कि नहीं, मसलन आप देखिए कि बाज़ दफ़ा औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, नर्सिंग करती हैं, कोई और मसले हो सकते हैं, ख्याल है कि नहीं मुझे लगता है मैं फेंट हो जाऊंगी, और बाज़ वो शैतान फिर इतना बड़ा करके दिखाता है उस मसले को कि कोई वैसे भी चीज़ होनी होती है तो उसको रोज़े से जोड़ देता है। तो इस सूरत में क्या करें, रख लें, नियत ये करें, ए अल्लाह मैं रोज़ा रख रही हूँ, मैं निभा सकी तो मैं निभाऊंगी, और जहाँ देखा कि मुश्किल हो रहा है या अब इसके बगैर गुजारा नहीं तो खोल दें, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। वैसे भी जब रोज़े से होते हैं और इवन ये नियत ना भी की हो और कहीं जान के ला लें, कोई ऐसी मुश्किल आ गई जहाँ रोज़ा रखना तोड़ना पड़े तो तोड़ दीजिए, लेकिन चंद कदम आगे बढ़ने का अजर तो मिलेगा। मैं इसको ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे आपको कोई इन्वाइट करता है अपने घर पे। एक ज़रूरी है कि आप घर से ही ना निकले, सुस्ती के मारे धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, अच्छा अच्छा आऊँगी आऊँगी, आखिरी वक्त पे नहीं गए। अब वो कहता है क्यों नहीं है, बस निकली नहीं, हिम्मत नहीं, नहीं आना, वो सोच लेगा आपकी नियत ही नहीं थी। और एक दूसरी सूरत है कि आपको मुश्किल तो है, रास्ता दूर है, रास्ता नहीं पता, मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं नियत तो करो, चलो उठो निकलती हूँ, गाड़ी में बैठते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, फिर नहीं पहुँच पाते, दूर है, रास्ता नहीं आ रहा, कुछ नहीं, तो फिर उसको कहते हैं देखो मैं रास्ते से बोल रही हूँ, आना चाह रही हूँ, आ नहीं पा रही, मजबूरी है। फिर वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप यकीनन मुझे पता है आप आना चाह रही थी, आप आराम से बैठें। क्या दोनों दोस्त एक जैसे होंगे, पहले ने तो आपको अहमियत ही नहीं दी, दूसरे ने कोशिश की। आप जब अपने आप को बेहिम्मत करके बैठ जाएंगे तो दैट मीन आपने अल्लाह ताला को ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला मैं तो सोचूंगी भी नहीं। तो लिहाजा ऐसे तमाम लोग, वो बुढ़ापे की वजह से, वो शुगर की वजह से, वो ब्लड प्रेशर की वजह से, या किसी और वजह से अगर रोज़ा नहीं रख सकते, इवन डॉक्टर साहब ने भी फतवा दे दिया कि रोज़ा मत रखो, कोशिश ज़रूर कीजिए, उठिए, सहरी खाइए, नियत करें, अल्लाह से मदद मांगें, अपने आप को मज़बूत करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे सेहत ख़राब होती है, वो दवा उस वक्त ले लें, एनर्जेटिक चीज़ ले लें, और अपने आप को सारा दिन बहलाते रहें बहलाते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मौका देगा, अल्लाह ताला करे वा अंतसुमु खैरुल्लकुम। तुम्हें क्या पता रोज़ा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, रोज़ा रखो, ये तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा, तुम्हारे अंदर को ठीक कर देगा, तुम्हारे बाहर को ठीक कर देगा, लेकिन अगर तुम जानो, तुम जानते नहीं हो। इससे पता चलता है ना कि हम बहुत सारी अपने हक़ की अच्छी चीज़ों को भी नहीं जानते, उसकी कदर नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं रोज़ा रखोगे तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा, रख लिया करो, ना डरो, कुछ भी नहीं होगा, देखना मैं पकड़ लूँगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें बेहोश नहीं होने दूँगा, और अगर कोई तकलीफ़ आ भी गई तो मेरे रास्ते में डरते हो, फिर क्या हुआ, वैसे कौन से बचते हैं, बचना तो वैसे भी नहीं, जान तो वैसे भी जानी है, नियत तो करो, हिम्मत तो करो, और कुछ नहीं तो दुआ तो करो कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। फिर अगली आयतों में आता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियां हैं रास्ते की, और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला है। रमज़ान का तोहफा कुरान, कुरान के नज़ूल का महीना। कुरान के बग़ैर रमज़ान ऐसे लगता है जैसे चीनी के बग़ैर चाय या चीनी के बग़ैर दूध, फीका लगता है। एक लम्हे के लिए सोचें ज़रा, ये सारी कुरान की बहारें हट जाएं और सिर्फ आप रोज़ा रखें सारा दिन। यकीन करें, आप अपने इस गम को ही पालते रहें कि भूख लगी हुई है, दिल डूब रहा है, दिल घट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कुरान की बहुत दौलत है कि आप कई घंटों मसरूफ़ रहते हैं, आपको इवन याद ही नहीं रहता कि आप रोज़े से हैं। कैसा आपके साथ नहीं होता कि जब आप कुरान की क्लास में होती हैं और 3-4 घंटे तक होती हैं, तो आपको उस दौरान तो वैसे ही होश नहीं होती, आपको भूख लगे भी तो आप कहते नहीं नहीं मेरा मिस हो जाएगा, अच्छा थोड़ा और सुन लो, अच्छा थोड़ा और, अच्छा ब्रेक में उठूँगी। फिर ब्रेक में कमेंट्स होने लगते हैं, फिर आप सुनने लगती हैं, फिर बातें होती हैं, अच्छा कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, ओ चलें फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर बैठ गए। होश कब आता है? जब क्लास ख़त्म होती है। वैसे भी तो हम कई घंटों वैसे ही नहीं पढ़ते। कुरान वालों के लिए तो रोज़ा रखना मुश्किल ही नहीं है। क्यों? कि जब वो कुरान की महफिल में होते हैं, उनके दिल एक रूहानी दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक रूहानी खुराक मिलती है, ताकत मिलती है, भूख प्यास सब पीछे पड़ जाती है और बंदा जन्नत की सैरें करने लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये किताब हिदायत देगी, इंसानियत की हिदायत का फ़ैसला रमज़ान में हुआ। ये किताब गाइड बुक है, ज़िंदगी गुजारने के रास्ते बताती है, हक और बातिल में फ़र्क, अंधेरों में भटक रहे थे, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ने हमें बचा लिया। कहा, पस तुम में से जो इस शख्स जो शख्स पस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाले, फिर वो इसमें रोज़े रखे, ये है वो हिस्सा जिसमें रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। फमन शहीद मिनकुम अश्शहरा फलयसुम, पीछे क्या हुक्म था? रोज़ा रख लो या किसी को खिला दो, बराबर हो जाएगा। चंद दिन लोग आदी हो गए, कुछ अर्सा ऐसे रहा, तो अब ये आयत आ गई, हुक्म की आयत है ये। अब अगर हाजिर हो तो फिर रोज़ा ही रखना पड़ेगा। और शाहिदा से चांद के देखने की तरफ इशारा भी कर दिया कि चांद को देखो फिर रोज़ा रखो, तुम ना देख सको तो कम अज़ कम किसी की गवाही ले लो कि चांद निकल आया। और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। ये दोबारा बात क्यों आ गई? इसलिए कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो दिल में ख्याल आया कि शायद अब वो रुख्सत ख़त्म हो गई जो बीमार और सफ़र वाले को थी, तो लिहाजा अब कहा कि नहीं, वो रुख्सत अभी भी मौजूद है। क्यों है ये रुख्सत? अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता। सुभान अल्लाह, उसने रोज़ा फ़र्ज़ तो किया लेकिन बीमार और मुसाफिर पे नहीं किया, आसानियाँ चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला कितना प्यारा दीन देता है। क्या आप अपने रब की इस मोहब्बत को महसूस कर रही हैं? प्यार से कही, अल्लाह ताला तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है तो हम भी तेरे रास्ते में निकलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो मुश्किल है उसको आसान कर दे। मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह दीन के रास्ते की सारी मुश्किलात दूर कर दे, आसानियों में बदल दे, अपने ये काम हमारे लिए आसान कर दे। हमारे बस के नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बड़े छोटे हैं, ए मालिक तू हमसे करा। या अल्लाह दीन के दुनिया के सारे काम तू अपने मामले में ले ले, तू अपने हाथ में ले ले, और हमारे लिए भी आसानियों के मामले फरमा। और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई करो इस बार कि उसने तुमको रहमत लाई, और ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बन जाओ कि रोज़े पूरे करने पड़ेंगे, पीरियड्स के छुट्टे हैं तो उनको पूरा करो, बीमारी और सफ़र से छुट्टे हैं तो बाद में उसको पूरा करो, और उसके बाद ईद की नमाज़ की तरफ इशारा है। अल्लाह की बड़ाई करो क्या? तकबीरात। ईद का चांद दिखते ही तकबीरात शुरू हो जाती हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पढ़िए आप भी, अल्लाह की बड़ाई करो। किस बात पे? कि कहीं हम बड़े ना बन जाएं, 4 रोज़े रख के ये ना सोच लें कि बड़े नेक हो गए, अब तो बड़ा कुरान पढ़ लिया। अल्लाह की बड़ाई करो किस बात पे? कि उसने तुमको राह बताई, उसने हिदायत दी, उसने तुम्हारी ज़िंदगी में ये कुरान खोला, और ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। अल्लाह ताला इंसान को इस नेमत का एहसास दिलाता है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कुरान खोल दिया, सुबह शाम कुरान सुनते हो। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, ये कुरान ज़िंदगी में ना आता, मैं तो अपने लिए सोचूं तो मेरा दिल बंद होने लगता है। यकीन करें, आप भी सोचिए, 5 सेकंड लें और सोचें कि ये कुरान की नेमत ज़िंदगी से निकल जाए, या चले इसे पीछे चले जाएं। जब नहीं थी तो क्या था, अंधेरे थे ना, ख्वाहिशों के भंवर में फंसे हुए थे, लोगों के खौफ का शिकार थे, लोग क्या कहेंगे, दुनियादारियाँ, वो तो अपने बने नहीं, रब ने हमें अपना बना लिया। अल्लाह से दुआ करते हैं मौत तक इस किताब के साथ हमारे ताल्लुक़ को जोड़े रखे। और फिर तीसरी चीज़, रोज़े के साथ जिसका ताल्लुक़ है। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, व इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई ज़ादान। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखें ताकि वो हिदायत पाएँ। सुबहान अल्लाह। दुआ इसी पे आपकी दुआओं की बुक फ़ैनी करीब बनी है। उसका टाइटल देख के आपको एहसास होता होगा कि मेरा मालिक तो मेरे इतने करीब है, फिर भी मैं उसको नहीं पुकारूं, उसको छोड़ के दूसरों को पुकारती हूँ जो दूर से आएंगे, अच्छा आते हैं, अच्छा फ़ोन करते हैं, अच्छा निकलते हैं, उसको क्यों नहीं पुकारते जो करीब है। बच्चों को भी आदत डालिए और ख़ुद भी दुख सुख के वक्त में अपने मालिक को पुकारिए। फिर इसके बाद कुछ और अहकाम रोज़े के बारे में। तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ किया गया, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, तो इसने तुम पर इनायत की और तुमको माफ़ किया, तो अब तुम इनसे मिलो और चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग हो कर जाहिर हो जाए, फिर पूरा करो रात रोज़ा रात तक। यहाँ फिर एक सहूलत का जिक्र है। इब्तिदा में रोज़ा कैसे था, मगरिब के वक्त कुछ खाते, मगरिब से इशा के इन बिटवीन खा लो पी लो, या बीवियों के साथ कोई ताल्लुक़ कायम करो। जो ही इशा की नमाज का वक्त शुरू होता तो फिर रोज़ा शुरू हो जाता। और एक और कैफियत क्या होती कि अगर इशा से पहले ही किसी की आंख लग जाती तो भी रोज़ा फिर नया शुरू हो जाता। अब ये मुश्किल मसला था, फितरत के ख़िलाफ़ था, बोझ पड़ा, कुछ लोगों से ख़यानत हुई, रोज़े की रातों में बीवियों से सोहबत कर ली, फिर अल्लाह ताला ने सहूलत की, अच्छा कोई बात नहीं मैं ये भी ले लेता हूँ। जिसको आपसे प्यार होता है ना, वो आपके ऊपर कानून लागू नहीं करता, सहूलत देता है, अच्छा ये मुश्किल लग रही है चलो हम मान लेते हैं, वो ये नहीं कहता ये मेरा रूल है, वो कहता है अच्छा ठीक है आपको मुश्किल लग रहा है, चलें भाई हम तो आपकी सहूलत चाहते थे, हम इसको उठाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया वो चीज़ जो लोगों पे बोझ पड़े उसको हटा दो, और फिर एतिकाफ़ की बातें। और जब तुम मस्जिद में एतिकाफ़ में हो तो बीवियों से खलवत ना करो, यानी सोहबत ना करो, क्यों, ताकि रब के साथ ताल्लुक़ जुड़े। अगर एतिकाफ़ की हालत में भी इन्हीं चीज़ों की तरफ तवज्जो गई तो खुशू नहीं हो सकेगा, ये अल्लाह की हदें हैं तो इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो बचें। तो ये थी रोज़े की एक आयतों की एक छोटी सी समरी कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे इस महीने की फजीलतों और बरकतों को पाने के लिए तैयार किया। अब एक दो रिवायात रोज़े के बारे में जो इसमें हमारे सामने है इस वक्त। रिवायात में आता है कि रमज़ान का महीना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत बताई। क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ुमतु फ़क़ुलतु या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़िहि शहर, फ़क़ाला या अबल हसन अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़िहि शहरी अल्वरा मिन महारिमिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इसके बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस महीने में सबसे बेहतर अमल क्या है? आपने फरमाया, ए अबुल हसन, इनकी कुनियत थी हज़रत हसन की तरफ नस्बत करके, इस महीने में सबसे बेहतर अमल ये है कि अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बचना। सुभान अल्लाह, क्या वाकई हम महसूस करते हैं कि रोज़े का यही अमल है। हराम से बचना। हम तो पेट को खाने से बचाते हैं, पानी से बचाते हैं, हराम से बचना है। इस रिवायत से रोज़े की असल रूह मालूम होती है। रोज़े की असल रूह इन चीज़ों से अपने आप को रोकना है जिससे रुकने का अल्लाह ने हुक्म दिया। रमज़ान के दिनों में खाने पीने जैसी चीज़ों से रोज़ा रखने का हुक्म दरअसल इसी का अमली सबक है। खाना पीना वो आखिरी चीज़ है जिससे किसी आदमी को रोका जाए। इंसान को आखिरी ज़रूरत से रोकना, इसको शदीद तर अंदाज में ये सबक देता है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से तुम्हें रोका है इनसे लाजिमन तुम्हें रुकना है। ख्वाह ये रुकना तुम्हारे ज़ौक़ और आदत के लिए कितना ही सख्त क्यों ना हो, ख्वाह इसकी फहरिस्त तुम्हारी ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरतों तक क्यों ना पहुँच जाए। सुभान अल्लाह, क्या समझे कि रोज़ा, खाना पीना, बीवी से ताल्लुक़, ये तो एक रिहर्सल है, ये तो एक पाबंदी है तुम पे ताकि तुम्हें बाकी चीज़ों से रुकना आ जाए, ताकि तुम अपने आप को बाकी चीज़ों से रोक लो जिससे अल्लाह सारा साल रुकवाना चाहता है। ये सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। आपको पता है कि जो लोग सहराओं में सफ़र करते हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं अपने ऊँटों को, घोड़ों को, कि वो भूखे रहें, प्यासे रहें, कई कई दिन तक प्यासे रखते हैं। जो लोग फौज में जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी जब होती है उनको भूखा रखा जाता है, उनको गंदा पानी पिलाया जाता है, गर्मियों की दोपहर में धूप में चलवाया जाता है, सर्दियों की सुबह में कपड़े उतरवा के दौड़वाया जाता है बर्फ़ पे। क्यों? मजबूत हो जाओ, दुश्मन का मुकाबला करो। हमारा एक दुश्मन हमारे अंदर है, नफ्स की सूरत में, शैतान की सूरत में। उसके मुकाबले के लिए रोज़ा बेहतरीन चीज़ है। आप अपने अंदर एक रूहानियत महसूस करती हैं जब रोज़ा खुलने के करीब होती हैं। यही वो कैफियत है जो हर लम्हे मतलूब है, हर लम्हे मकसूद है। ये कि आज सी खाना पीना छोड़ा है, अब लोगों से गलत बात करना भी छोड़ दो। आप कहते हैं मैं तो नहीं करती गलत बात, दूसरे ही करते हैं। इसने मुझे शुरू कराया, इसने बात शुरू की, तो उसके लिए एक रिवायत आपके सामने रखूँगी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد صائم يشتم فيقول سلام عليكم। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी रोज़ेदार को गाली दी जाए और वो कहे कि तुम पर सलामती हो, मैं तुमको गाली नहीं दूंगा, जैसे तुमने मुझको गाली दी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने एक शख्स की बुराई से रोज़े की पनाह ली, तो मैंने भी इसको आग से पनाह दे दी। रोज़े का मकसद ये सलाहियत पैदा करना है कि आदमी की ज़िंदगी पाबंद ज़िंदगी हो, ना कि बेकैद ज़िंदगी। ये है रोज़े की असल। कितने ही रोज़ेदार हैं जो रोज़े की ये हकीकत जानते हैं, कितने ही लोग हैं जो रोज़े रखते हैं और उनको नहीं पता कि लोगों की बातों का जवाब नहीं देना, चुगलियाँ नहीं खानी, लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। असल रोज़ा यही है कि आपको अपने ऊपर काबू आ जाए। महसूस करें ज़रा, अपने पीछे मुड़ के देखें, कितने साल से रोज़े रख रही हूँ, कितने साल से भूख प्यास सह रही हूँ, क्या मेरे अंदर ज़ब्त आ रहा है, आजिज़ी आ रही है? रोज़ा खुलने से पहले के वक्त में जो कैफियत है, क्या मैं इस कैफियत को हमेशा तारी करना चाहती हूँ? हम तो यूँ शेर हो जाते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, खा लें पी लें फिर निपटेंगे, अभी ठहर जो ज़रा बाद में पूछती हूँ। नहीं, रोज़ा क्या है कि बंदे के अंदर जब्त आ जाए। खाना पीना तो एक सिंबल है, अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ा इंसान को आजिज बनाता है, बंदों के आगे भी और रब के आगे भी। बाज़ाब्ता ज़िंदगी हो, बासूल ज़िंदगी हो। अल्लाह ताला करे कि हमारे रोज़े वाकई हमारे नफ्स के रोज़े भी हों, हम दूसरों के आगे झुकने वाले बने। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी यही दूंगी कि आप रोज़े का अगर असर अपनी तबीयत पे लाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे मौके पे लिखिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ लिखाती हूँ, शायद किसी वक्त आपके ये काम आए। कोई ऐसा वक्त जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, आपकी गैरत को ललकारे या आपकी अना को چیلنج کریں، عین اس وقت آپ نے یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے کہ میں نے اس کو جواب نہیں دینا، میں نے اس کو معاف کیا، میں روزے سے ہوں۔ ایمان والے کی پوری زندگی روزہ ہے، ایک مہینہ حقیقی روزہ اور 11 مہینے معنوی روزہ۔ ایک مہینہ حلال سے رکنا ہے، باقی 11 مہینے حرام سے رکنے ہیں۔ اگر یہ اثر نہیں آ رہا تو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر وہ تقوی اور ورا پیدا کر دے جو مقصود ہے، ہماری انا کے بت ٹوٹ جائیں، تعصب کی دیواریں گر جائیں، اور ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے روزے رکھنے والے ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے لیے بھی عاجزی محسوس کریں اور اس کے بندوں کے لیے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔